प्यारे छात्रों नमस्कार। अपन की बात चल रही थी व्याकरणिक बिंदु, भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा पर कल ने हमने चर्चा की, जिसमें आपने भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, भाषा बोली में अंतर, भाषा के विविध रूप आदि का अध्ययन किया। भाषा की परिभाषा में आपने यही जाना, यही पढ़ा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में अपने विचारों का विनिमय करता है और विचार विनिमय का जो माध्यम है वही भाषा है। यानी अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों और भावों को स्वयं समझते हैं, वो माध्यम ही भाषा है। या यूँ कहें कि व्यक्ति वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार पढ़े आपने, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और उसके बाद में भाषा और बोली में अंतर, और फिर भाषा के विभिन्न अंग जिसमें या इकाइयां। तो आपने भाषा की पांच इकाइयां पढ़ी, जिसमें पहली ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और पांचवा वाक्य। उसके बाद में आपने हिंदी भाषा की विभिन्न उप बोलियाँ या उपभाषाएं और बोलियों के बारे में जाना। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की पांच उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, और इस प्रकार हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। आज का जो बिंदु है वो है व्याकरण। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण पर, और बोर्ड में प्रश्न भी आपके आ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2 नंबर का अंक या 2 अंकों का प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में इस बिंदु से आएगा, जिसमें हो सकता भाषा से आए या व्याकरण से या लिपि से। तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे व्याकरण से आप क्या समझते हैं या व्याकरण के अंक कौन कौन से है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्याकरण की। भाषा के विभिन्न अंगों, जैसा कि भाषा के अंगों के बारे में आपने कल जाना कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य इकाइयां या अंग हैं। तो भाषा के विभिन्न अंगों जैसे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। अर्थात किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत होता है। ध्यान से सुने, यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भाषा के विभिन्न अंगों, चाहे वो वर्ण है, चाहे वो शब्द है, चाहे वो पद या वाक्य है, निश्चित और नियमबद्ध संबंध है। और किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसकी प्रकृति, उसका शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है वो शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए, तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने पर उसे व्याकरण कहते हैं या व्याकरण की संज्ञा दी गई। यानी भाषा को शुद्ध रूप मैं लिखने के लिए उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है, और इन्हीं भाषा के नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने पर उसे व्याकरण कहते हैं। अब ये तो हुई मोटे तौर पर व्याकरण की भूमिका। अब परिभाषा यदि आप एक लाइन में लिखना चाहें तो व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। वापस सुने, ये परिभाषा सबसे उत्तम है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, अर्थात व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य शिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य शिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है, और इसी से भाषा का अस्तित्व है वो स्थिर होता है। अगला जो व्याकरण का बिंदु है वो है व्याकरण के अंग। व्याकरण के चार अंग हैं, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। जैसा कि कल आपने भाषा की इकाइयां पढ़ी, भाषा की इकाइयां पांच, उसी प्रकार व्याकरण के अंग है वो चार हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार तथा वाक्य विचार। तो हेडिंग आप लगा सकते हैं व्याकरण के अंग। भाषा की मूल ध्वनियों चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसा कि कल आपने पढ़ा, और वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं और इनसे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के चार अंग हैं, जिसमें पहला वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। दूसरा शब्द विचार, इसमें शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्दों के प्रकार का उल्लेख होता है। तीसरा जो अंग है वो है पद विचार। पद विचार में शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन पद विचार में किया जाता है। और अंतिम जो व्याकरण का अंग है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, यानी वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना अवयव तथा वाक्य निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी है वो वाक्य विचार के अंतर्गत होती है या दी जाती है। तो इस प्रकार ये आज का जो बिंदु व्याकरण है वो कंप्लीट हुआ, यानी मोटे रूप में व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, अर्थात व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य शिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है, और व्याकरण के चार अंग है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। और इसी के साथ ये बिंदु समाप्त। धन्यवाद।